दीवा पहले तो उस कमरे के बारे में जानना चाहती थी जिसमें आर्यांश ने उसे जाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि राज किसी के भी हो सकते हैं, उसे इस तरह दखल नहीं देना चाहिए। दीवा सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंची तो आते ही उसे उसके डीन मिस्टर आलोक रंधावा ने अपने केबिन में बुला लिया था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई होगी, इसीलिए डीन ने उसे बुलाया है। आप क्या पीना पसंद करेंगे डॉक्टर गोयनका? आलोक रंधावा ने मुस्कुराकर पूछा। दीवा एक पल के लिए चौंक गई थी। डीन किसी की इतनी खातिरदारी नहीं करते थे। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर आपने क्यों बुलाया है। हाथ में चाय का गिलास लिए हुए आलोक रंधावा काउच पर आकर बैठ गए थे। उन्होंने दीवा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर गोयनका, आपने जो भी सर्जरी की थी वो सक्सेसफुल हुई है। मैंने यहाँ आपको किसी कंप्लेंट के चलते नहीं बुलाया है। एक्चुअली मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आप ही के पेशेंट मिस्टर सौरभ बजाज चाहते हैं कि आप प्राइवेट डॉक्टर बनकर उनके घर पर विजिट करें। आप जानती हैं कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद जल्दी से ठीक होना आसान नहीं है, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। आपको बस हफ्ते में दो बार उनके घर जाकर उन्हें चेक करना होगा। क्या? दीवा चौंकते हुए बोली। उसने बहुत मुश्किल से सौरभ बजाज से पीछा छुड़ाया था और अब वापस उसी की प्राइवेट डॉक्टर बनकर जाना, ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उसके साथ कोई मजाक कर रही हो। डीन की बात टालना बहुत मुश्किल था। दीवा सच में फंस गई थी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर डीन ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर गोयनका, कोई प्रॉब्लम है? मैं मना तो नहीं करना चाहती, लेकिन इन दिनों मैं अपनी थीसिस में बिजी हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर को भेज दीजिए, आई थिंक डॉक्टर मल्होत्रा अच्छे रहेंगे, दीवा ने इनडायरेक्टली मना करते हुए कहा। लेकिन सर्जरी आपने की थी तो आप बेहतर तरीके से उनकी कंडीशन के बारे में जानती होंगी, ऐसी सिचुएशन में आप उनकी प्राइवेट डॉक्टर बनेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, डीन ने उसे घूरते हुए कहा। दरअसल डीन रंधावा खुद चाहते थे कि डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा ही सौरभ बजाज के प्राइवेट डॉक्टर बने, लेकिन सौरभ खुद कॉल करके दीवा को अपनी प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए कहा था। पहले उन्होंने दीवा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन थोड़े दिनों पहले आर्यांश ने उसकी छुट्टी के लिए कॉल किया था तो अब सौरभ बजाज फिर उसे प्राइवेट डॉक्टर के तौर पर हायर करने पर तुले हुए थे। उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि उनके बीच कोई खास रिश्ता है जो अब तक सामने नहीं आया था। मैं सारी रिपोर्ट्स उन्हें समझा दूंगी, मेरे फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, दीवा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। आलोक रंधावा भी सौरभ बजाज की बात को टाल नहीं सकता था। उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, फिर ऐसा कीजिए कि आप हॉस्पिटल टाइम में ही जाकर उन्हें चेक कर लीजिएगा, मैं आपकी सर्जरी का टाइम थोड़ा इधर उधर कर दूंगा, ऐसे में आपका अलग से टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार फिर सोचिए डॉक्टर गोयनका, इस काम में आपको काफ़ी अच्छी फीस मिलने वाली है। दीवा के पास अब इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं देख लूंगी। अगर दीवा की मजबूरी नहीं होती तो वो ये पैसे लेना कभी पसंद नहीं करती। अब डीन ने उसे इतनी छूट दे दी थी तो उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। डीन को हाँ करने के बाद दीवा उसके केबिन से बाहर निकल गई। उसने देखा रास्ते में डॉक्टर निश्चय और सिस्टर लीजा आपस में बात करते हुए आ रहे थे। उन्होंने दीवा को देखा जिसका चेहरा उतरा हुआ था। दीवा ने मजबूरी में उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सिस्टर लीजा ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर गोयनका, आप काफ़ी थकी हुई लग रही हैं, सब ठीक है? डीन ने भी आपको बुलवाया था? हाँ सब ठीक है, एक्चुअली मिस्टर सौरभ बजाज चाहते हैं कि मैं उनकी प्राइवेट डॉक्टर के तौर पर विजिट करूं, दीवा ने गहरी सांस लेकर बताया। उसकी बात सुनकर निश्चय और लीजा दोनों ही खुश हो गए। लीजा ने हंसकर कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, सुना है काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन तुम परेशान क्यों नज़र आ रही हो? हाँ क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना है, दीवा बोली। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक है, आप मना क्यों करना चाहती हैं, निश्चय ने पूछा। वो दोनों ही हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो झट से ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता। दीवा उन्हें अपने और आर्यांश के रिश्ते के बारे में नहीं बता सकती थी जिसके चलते वो ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थकी हुई थी और काम भी बहुत ज़्यादा है इसलिए करने का मन नहीं है, दीवा ने बताया। उसे इस तरह परेशान देखकर लीजा ने हंसते हुए कहा, लगता है डॉक्टर गोयनका किसी के साथ रिलेशनशिप में है तभी इतना थकी हुई रहती है, क्या रात को ठीक से सोने को नहीं मिलता डॉक्टर गोयनका? ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर लीजा, अभी थोड़े टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, दीवा ने सख्ती से जवाब दिया। हर कोई उसके और रक्षित के रिलेशन के बारे में जानता था। उससे अलग होने के बाद दीवा आर्यांश के साथ रहने लगी थी। दोनों के बीच से प्यार जैसा कोई रिश्ता तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर लीजा की अनुभवी आंखों ने सही पहचाना था, दीवा आर्यांश की वजह से ठीक से बिल्कुल नहीं सो पाती थी। रक्षित ने उसके दिल को अंदर तक ठेस पहुंचाई थी। उससे बदला लेने के लिए वो इतना पागल हो गया कि उसके साथ प्यार का नाटक खेला और फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। कभी कभी तो दीवा को लगता कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों ना रक्षित को भी जेल से बाहर निकाल दिया जाए। रक्षित ने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया था। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी निश्चय ने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर गोयनका, वो आपके लायक नहीं था, अच्छा हुआ जो वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप खुद को एक और मौका दीजिए और किसी अच्छे लड़के को ढूंढिए, आपका ध्यान भटकेगा तो आपको अच्छा लगेगा। हर कोई जानता था कि निश्चय दीवा को पसंद करता था। लीजा को लगा कि निश्चय अपने दिल की बात कहने ही वाला है। ये सोचकर वो उनके पास से हट गई थी। लेकिन मुझे किसी का ऑप्शन के तौर पर यूज नहीं करना है, मैं अकेली खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मुझे खुद के टाइम पास के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, दीवा ने जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर लीजा ने सिर हिलाकर कहा, इन दोनों की बात बन पाना सच में मुश्किल है। फिर वो वहां से चली गई। आप मुझे गलत समझ रही हैं डॉक्टर गोयनका, मैं बस यही चाहता हूं कि आप खुश रहें। पुरानी बातों को याद करके कब तक दुखी होती रहेंगी, निश्चय ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरा छोड़िए, आप बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। दीवा ने बातचीत को उसकी तरफ से बदल दिया था। वो भी जानती थी कि निश्चय उसे पसंद करता था। वो उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, फिलहाल मैं सिंगल ही हूँ और मेरी किस्मत में किसी का प्लान नहीं लिखा, निश्चय ने जवाब दिया। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर चले गए थे। दीवा जैसे ही अपने केबिन में आई और उसने कंप्यूटर ऑन किया तो उसे एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दिया, मुंबई में तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। इस बीच दीवा को इनाया का ख्याल आया। वो खुद से बोली, इनाया तो आज घर जाने वाली थी और ये अलर्ट अचानक से आ गया है, उसने बस ली होगी, बेचारी तूफान में फंस जाएगी। दीवा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इस समय को कॉल करके कहा, समय, इनाया को कहना कि मेरा वेट करें, मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। समय ने उसकी बात पर हामी भरी। दीवा ने कॉल कट किया और तुरंत इनाया को लेने चली गई थी। बाहर का मौसम काफी अजीब हो रखा था, बादल होने की वजह से दिन में भी शाम जैसा माहौल हो रखा था। लोगों को बस अपने घर जाने की जल्दी लगी हुई थी।
दीवा ट्रैफिक में फंसी हुई थी, तभी उसके पास एक कॉल आया। सामने से एक औरत ने काफी नरम आवाज में कहा, क्या मैं मिस दीवा से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि जल्दबाजी में मेरी गाड़ी से आपकी कजिन इनाया का एक्सीडेंट हो गया है। आप घबराइए मत, मैं इस वक्त संजीवनी हॉस्पिटल में हूँ। उसे थोड़ी बहुत चोट लगी है और डॉक्टर ने कहा कि वो आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। उस औरत ने काफी ईमानदारी से सब कुछ बता दिया था। मैं अभी आ रही हूँ, दीवा ने हल्की घबराहट के साथ जवाब दिया। दीवा को इस वक्त यही लग रहा था कि मुसीबत उसके पास बिना बुलाए चली आती है। जब तक वो इनाया को अपनी आंखों से नहीं देख लेती, उसे तसल्ली नहीं होने वाली थी। दीवा तुरंत संजीवनी हॉस्पिटल पहुंची। उसने देखा डॉक्टर इनाया की ड्रेसिंग कर रहे थे। उसे देखकर दीवा को कुछ राहत मिली, क्योंकि सच में इनाया को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इनाया, दीवा ने हल्की घबराहट के साथ कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। वहीं उससे अलग इनाया बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने दीवा को अपने पास आने का इशारा किया। तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती थी? मैंने समय को कॉल किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, फिर खुद से आने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है और बेवजह स्कूल खराब होगा, दर्द अलग से सहना पड़ेगा। दीवा उसे काफी प्यार से डांट रही थी। वो उसे डांट रही थी तभी एक लड़की उनके पास आई। उसने कहा, इसमें इनाया की कोई गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती है जो मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका सारा मेडिकल खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की अपने किए की सारी जिम्मेदारी ले रही थी। दीवा ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा, जो उम्र में लगभग उसी के बराबर लग रही थी। उसने स्टाइलिश वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आवाज़ और बातचीत के लहजे में एलिगेंसी झलक रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो एक अमीर और अच्छे घराने से बिलोंग करती है, साथ ही अच्छे दिल की भी थी। तभी अपनी गलती से भागने के बजाय उसकी भरपाई कर रही थी। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक कुछ बड़ा नहीं हुआ तो घबराने की भी बात नहीं है। थैंक यू सो मच जो आप मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर आईं। दीवा ने भी मुस्कुराते हुए काफी पोलाइटली जवाब दिया। ये तो मेरा फर्ज था। बाय द वे, मेरा नाम वर्तिका कपूर है, उसे लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम दीवा गोयनका है, दीवा ने हाथ मिलाते हुए कहा। ठीक है फिर, आज से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये मेरा नंबर है, हम बात करेंगे और मुझे इनाया की हेल्थ के बारे में भी बताती रहना, फिलहाल मुझे जाना होगा, वर्तिका ने जवाब दिया और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया। वर्तिका उस वक्त काफी जल्दी में थी, इस वजह से उसका स्टाफ उसके साथ नहीं था। वो आज शूट से जल्दी फ्री हो गई थी, तभी खुद ड्राइव करके आ रही थी। दीवा ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन इनाया उसे अच्छे से जानती थी। वो एक एक्ट्रेस और मॉडल थी। वर्तिका एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी और अब बड़े होने पर वो टॉप एक्ट्रेस में शामिल होने गई थी। उसकी फीस काफी ज्यादा थी। दीवा इस बात से अनजान थी कि वो जिस लड़की से मिल रही है वो सिर्फ एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल थी, बल्कि वो आर्यांश की कजिन सिस्टर भी थी, जिसे उसकी माँ ने बचपन में अडॉप्ट करके अपनी बेटी की तरह पाला था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वर्तिका और दीवा की एक नई दोस्ती के बारे में आर्यांश को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा?